بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی تعزیت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے سیکیورٹی معاہدے اور کابل اور واشنگٹن کے درمیان موجودہ اختلافات کے تناظر میں۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، 2014 شروع ہو چکا ہے، اور اس سال کے اختتام سے پہلے افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کو نکل جانا ہے۔ اس درمیان امریکہ اور نیٹو کی کوشش ہے کہ ان کے کچھ فوجی افغانستان میں باقی رہیں، جس کے لیے کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدہ ہونا تھا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ اس معاہدے پر 2014 شروع ہونے سے پہلے دستخط ہو جائیں، لیکن امریکہ اور نیٹو کے تمام تر دباؤ کے باوجود افغان صدر حامد کرزئی نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ وہ دستخط کے لیے اپنی شرائط اور اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ معاہدے پر دستخط افغان صدارتی الیکشن کے بعد کیے جائیں گے۔ انہوں نے 2013 کے آخری ایام میں کابل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مہم کے نام پر علاقے میں ایک بڑا گیم شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا ہے کہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کے لیے ان کی شرائط وہی ہیں جن کا وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں۔ بعض حلقوں نے معاہدے پر دستخط کے لیے کابل حکومت پر دباؤ بڑھانے کے غرض سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر معاہدے پر دستخط نہ کیے گئے تو امریکہ اور نیٹو اپنے تمام فوجیوں کو نکال لیں گے، اور پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس تعلق سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں حامد کرزئی نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو دباؤ بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال 2013 چلا گیا، 2014 شروع ہو گیا، لیکن کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے کے مندرجات کے ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ افغان صدر معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط صدارتی الیکشن کے بعد ہوں گے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاہدے پر آنے والا صدر دستخط کرے؟ معاہدے کے تعلق سے افغان حکومت کے موقف کا ملک کے اندر کیا اثر پڑا ہے؟ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ موقف سے افغان عوام میں افغان صدر کی مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ اس کی حقیقت بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمام غیر ملکی افواج ملک سے چلی گئیں تو افغانستان میں خانہ جنگی اور خونریزی شروع ہو جائے گی، یا طالبان ملک پر قابض ہو جائیں گے، اس بارے میں بھی اپنے معزز مہمانوں کی رائے معلوم کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے معروف سیاستداں اور تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب کو، اور دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار عمیق جامعی صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
افغانستان میں صدر حامد کرزئی پر سیکورٹی معاہدے پر دستخط کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، اور پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ افغان حکومت کو جلد سے جلد سیکورٹی معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے، ورنہ پینٹاگون کو آپشن زیرو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ ہم افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معاہدے پر جلد از جلد دستخط کر لیں، ورنہ ہمیں سن 2014 کے بعد فوجی موجودگی کے بغیر کوئی دوسرا منصوبہ تیار کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی سیکورٹی معاہدے کے لیے امریکی دباؤ کو استعمار اور سامراجی دور کے رویے سے تعبیر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو پہلے رات کے وقت افغان شہریوں پر کیے جانے والے حملوں کو روکنا ہوگا۔ تجزیہ نگاروں کے خیال میں واشنگٹن کابل معاہدے کی شکوں پر غور کرنے سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ افغانستان پر پوری طرح سے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور افغان حکومت کو محض کٹ پتلی کی طرح بین الاقوامی اسٹیج پر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ معاہدے میں دو طرفہ سیکورٹی کی بات کی گئی ہے، لیکن شاید ہی کوئی اس بات پر یقین کرے کہ کبھی افغانستان بھی امریکہ کی سیکورٹی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان کو جس طرح کی سیکورٹی دینے کی بات کر رہا ہے، اس سے اس کے مقاصد واضح نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ وہ افغان شہریوں کو کس طرح بچائے گا۔ افغانستان کے صدر کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی افغان بچوں اور خواتین پر بھی رحم نہیں کرتے، تو پھر یہ امریکی فوجی افغان شہریوں کو کس طرح سے بچائیں گے، جبکہ افغانستان میں سب کو یہ علم ہے کہ وہاں کے شہریوں کو سب سے زیادہ نقصان امریکی قیادت میں اس ملک میں تعینات غیر ملکی افواج نے ہی پہنچایا ہے، اور ان شہریوں کو سب سے زیادہ خطرہ خود امریکی فوجیوں اور ان کے اتحادیوں سے ہے، تو پھر ایسے حالات میں لٹیروں کو پہرے دار بنانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سیکورٹی معاہدہ اس دعوے کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے خلاف دوسرے ملک جارحیت نہ کریں، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ ملک کر رہا ہے جس نے خود افغانستان کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تجزیہ نگار کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کو بڑی طاقتوں کی بے شرمی کی ایک مثال قرار دیتے ہیں، جو پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں مستقل موجودگی کا خواہاں نہیں، اور معاہدہ 2024 اور ضرورت ہوئی تو اس کے بعد تک جاری رہے گا، لیکن جاپان اور جرمنی میں امریکی فوجی چھاونیوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں معینہ مدت کے بعد کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو افغانستان کو ایک مقبوضہ ملک قرار دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حامد کرزئی یا ان کے بعد آنے والا کوئی صدر سیکورٹی معاہدے پر دستخط کر کے اس ناجائز قبضے کو جواز فراہم کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کے معاہدے کا افغانستان کے ہمسائے ملکوں اور ان سے افغانستان کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال معاہدے پر دستخط ہوں یا نہ ہوں، یہ تو یقینی ہے کہ افغانستان میں قیام امن بہت سے عوامل میں مضمر ہیں، لیکن ان میں واشنگٹن کابل سیکورٹی معاہدہ ہرگز نہیں۔
ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے معروف سیاستدان اور ممتاز تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ جاوید صدیق صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، ہم پروگرام کا آغاز کریں گے افغان صدر حامد کرزئی کی 2013 کی آخری پریس کانفرنس سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مہم کے نام پر علاقے میں ایک بڑا کھیل شروع کر رکھا ہے۔ وہ کھیل کیا ہے اور ہدف کیا ہے اس کا؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ صدر حامد کرزئی دو مرتبہ دو ٹرمز کے لیے، دو مختلف ٹرمز کے لیے وہ صدر رہے ہیں، اور اب تیسری مرتبہ جو افغانستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وہ صدر نہیں ہو سکتے، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ احساس اگر دیر سے ہوا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجوں نے جو ہے ایک جو آپریشن شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور افغان شہری جو ہیں، بچے، عورتیں جو ہیں، وہ جاں بحق ہوئیں اور بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلی، تو اگر یہ کرزئی صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں تو یہ دیر سے کہہ رہے ہیں، بڑی تاخیر ہو گئی ہے یہ کہتے ہوئے انہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرزئی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چالاک اور بڑے ہوشیار سیاستدان ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے جہاں پہ اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو کرزئی صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اگلے الیکشن میں ان کا کوئی جو بھی نامزد صدارتی امیدوار ہو، اس کو امریکہ اور دوسرے ملکوں کی حمایت حاصل ہو، اور کم از کم ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ موجود رہے۔ یہ کرزئی صاحب کی مجھے ایک چال لگتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ عہدہ صدارت کو چھوڑیں، منصب کو چھوڑ دیں، تو اس کے بعد بھی افغانستان کی سیاست میں ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ باقی رہے۔ اور اسی لیے آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو افغانستان کے عوام میں مقبول بنا رہی ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ انہوں نے ایک بڑا نیشنلسٹک سٹینڈ جو ہے وہ لیا، ایک قومی موقف انہوں نے اپنایا اور وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ موقف درست ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مستقبل کی جو سیاست ہے افغانستان کی اس میں وہ ریلیونٹ رہیں. ایک بات اور بھی ہے کہ وہ پشتون ہیں, پشتو سپیکنگ ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں کے جہاں پشتو بولی جاتی ہے اور جو طالبان کے اثر و رسوخ کا علاقہ ہے وہاں بھی ان کی کم از کم پذیرائی جو ہے ان کو ملتی رہے اور وہ ریلیونٹ رہیں. اس لیے وہ یہ ساری اسٹریٹجی جو انہوں نے اپنائی ہے دستخط نہ کرنے کی, اور 2013 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی جس پہ امریکی مصر تھے کہ اس تاریخ تک اس معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں, لیکن کارزائی صاحب نے نہیں کیے. پھر امریکیوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو 15 جنوری تک کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار ہیں. پھر یہ بھی ایک تجویز آئی کہ اگر وزیر دفاع جو ہیں وہ دستخط کر دیں تو بھی یہ سیکیورٹی اگریمنٹ جو ہے یہ ویلڈ ہوگا. ان تمام حربوں کے باوجود کارزائی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے جو شرائط پیش کی ہوئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے معصوم بچوں اور افغان شہریوں کو جو ہے ان کا قتل عام کیا ہے, ہوائی حملے کیے ہیں جن میں بے شمار معصوم لوگ جو ہیں ان کی جانیں تلف ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سی جو سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے باتیں کی ہیں تو وہ اپنی جگہ موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارزائی صاحب جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس صورتحال سے جب کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے اور نیٹو کی ٹروپس جو ہے انہوں نے ایک طرف وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ افغانستان کو چھوڑ دیں گے اس سال جولائی اگست تک, تو اگر وہ اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہیں یعنی نیٹو اور امریکہ تو پھر اس صورت میں ان کو افغان حکومت کی ایک اگریمنٹ جو ہے افغان حکومت کی رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے. تو اس وقت وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ کارزائی صاحب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنی شرائط پر وہ یہ اگریمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اگریمنٹ کرے. اور وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر اس سمجھوتے پر اس معاہدے پر دستخط نہ کیے گئے تو امریکی فورسز جو ہیں وہ مکمل طور پر افغانستان کو چھوڑ جائیں گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھمکی کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ صلاحیت نہیں ہے, یعنی افغانستان کی جو نیشنل آرمی ہے ANA اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور افغان حکومت میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹ سکے. جب تک امریکی اور نیٹو کے ٹروپس موجود ہیں تو وہ محفوظ ہیں اور ان کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر امریکی اور نیٹو کی فورسز جو ہے امریکہ کی وہ نکل جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر بڑا مشکل ہوگا سیکیورٹی کے مسائل جو ہے وہ ان کو سنبھالنا افغانستان میں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھمکی ہے امریکہ کی طرف سے, لیکن کارزائی صاحب بھی جو ہے اپنی شرائط جو ہے وہ منوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی مجبوریاں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے, وہ اپنے آپ کو مستقبل کی سیاست میں ریلیونٹ رکھیں اور کوئی ان کے لیے پرابلم نہ ہو. اور یہ بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں مستقبل کا صدر ہو کم از کم وہ ان کے زیر اثر ہو, ان کی پالیسیوں کے زیر اثر ہو, اور یہ نہ ہو کہ وہ بالکل جو ہے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے افغانستان کی سیاست میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہ رہے اور وہ بالکل بیکار ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پیچھے یہ احساس ہے کارزائی صاحب کو کہ یہ ایسا موقع آیا ہے کہ وہ ایک اگریمنٹ کے بنیاد پر اس کے اوپر دستخط کرنے کی بنیاد پر وہ اپنی شرائط جو ہے منوا لیں گے اور امریکہ مجبوراً جو ہے یہ ایسا کرے گا. اور یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کا مستقبل ہے اس میں اگر امریکہ رہنا چاہتا ہے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو ان کی شرائط ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں اس کو ضرور کنسیڈر کرے, یہ نہ ہو کہ اب بھی وہ ماضی کی طرح ایک اپنی شرائط جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کرے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر افغانستان میں رہے. تو یہ ایک موقع آ گیا ہے کہ کارزائی صاحب اس سے میکسیمم زیادہ سے زیادہ سیاسی فوائد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی
بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, اور رحم اللہ یوسف صاحب یوسف زئی صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ برقرار ہوا ہے. یوسف زئی صاحب السلام علیکم. رحم اللہ صاحب جی, جناب افغان صدر نے بات تو صحیح کہی ہے, اگرچہ انہوں نے یہ بات काफ़ी तखिर से कही, बहुत पहले उन्हें कहनी चाहिए थी, लेकिन देर में सही। उन्होंने कहा तो कि अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के नाम पर इलाके में ग्रेट गेम शुरू कर रखा है। अब तक वो अमेरिका के इस गेम को समझ नहीं सके थे और अब समझ गए हैं और इस पर उन्होंने जोर दिया है, या ये भी उस गेम का हिस्सा है जो अमेरिका और उनके दरमियान जारी है?
देखिए, बात यह है कि अभी हामिद करजई को अमेरिका की जरूरत नहीं रही
जी।
12 साल तक वो अमेरिका के जोर के ऊपर हुकूमत में रहे, अमेरिका इनको लेके आए थे, वो एक गुमनाम छोटे से मुजाहिदीन कमांडर थे और जिस अहदे पे उन्होंने कुछ अच्छा काम किया वो नए वजीर खारजा का था मुजाहिदीन की हुकूमत में। ये तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी कि वो अफगानिस्तान के सदर बना दिए गए और अमरीकियों ने उनको पहले अफगानिस्तान खुफिया तौर पर भिजवाया और उस गांव में भेजा, फिर जब उनकी जान खतरे में थी तो अमरीकियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए उनको अफगानिस्तान से निकाला, पाकिस्तान ले आए और फिर काबुल पहुंचा दिया। तो अमरीका के बड़े एहसान हैं हामिद करजई के ऊपर और अमेरिका ही की वजह से इकतसादी इमदाद या फौजी इमदाद उनकी हुकूमत कायम रही। अब हम इनके यही समझते हैं कि थोड़े महीने रह गए हैं, इसमें अफगानिस्तान की तारीख में अपना नाम बनाया जाए और अपने आप को बतौर एक अफगान कौम परस्त और अफगान नेशनलिस्ट के तौर पर मनवाया जाए, तो इसलिए ये आग का मार रहे हैं, अमेरिका के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकी भी उनकी गेम को समझते हैं और ये भी अमेरिकी गेम को समझते हैं
जी।
ये पुराने साथी हैं और ये तो उस वक्त की बात है जब ये अफगान जिहाद हो रहा था, उस वक्त भी लोग कहते थे कि हामिद करजई जो है वो अमेरिकी CIA के लिए काम करते हैं
जी।
फिर अमेरिकी मीडिया में भी ये खबरें आई हैं, इल्जाम लगाए गए कि वो CIA के पेरोल के ऊपर थे। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ये अमेरिका के बड़े करीब थे, अमेरिका में रहे, वहां पे कारोबार भी किया। तो मेरे ख्याल में ये अभी जो उनके आखिरी दिन है इसमें ये जो बातें करेंगे जो दावे करेंगे उसको अहमियत नहीं दी जाएगी और लोग समझेंगे कि अभी ये बातें इसमें पहले क्यों नहीं की, उन्होंने पहले क्यों इस तरह का एक टाइम नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जी।
अमेरिकी जो खेल खेल रहे हैं वो उसको खेलते रहेंगे, उनको और बंदे मिल जाएंगे और लोग उनके लिए काम करेंगे, हामिद करजई की जगह कोई और आ जाएगा। और अमेरिका को पता है कि यहाँ पर कई ऐसे अफगान लीडर हैं, रहनुमा हैं जो अमेरिका के लिए पहले भी काम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तो हामिद करजई के जाने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे ख्याल में हामिद करजई को अपनी फिक्र करनी चाहिए
जी।
अभी ये चाहते हैं कि ये शाही महल जो है सदारती महल अर्ग काबिल में उसके करीब एक उन्होंने इमारत ले ली है, उसकी काफी उन्होंने रेनोवेशन की है, वहां पर रहना चाहते हैं ताकि उनको ये हमसाए हों नया सदर के और नया सदर जो है वो उनसे मशवरे लें, उनको कोई ऐसा काम दिया जाए ताकि ये एक स्टेट्समैन के तौर पर काम करें, ये इनकी ख्वाहिश है और इनकी पॉलिसियां भी चलती रहे। लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती, अब नया सदर कौन होगा, वो कहाँ तक हम के जरिए से मशवरे लेगा, मेरे ख्याल में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अपने किरदार को हामिद करजई के साथ शेयर करें, वो फिर अपनी हैसियत मनवाएंगे और हामिद करजई परवाह नहीं करेंगे। असल में हामिद करजई का जो चैप्टर है जो बाद है
जी।
वो बंद होने वाला है, अब इसमें कोई नई बात नई जिद्दत पैदा नहीं हो सकती।
अच्छा यूसुफ जई साहब, ये बताएं कि ये हामिद करजई ने जो अभी मौकिफ अख्तियार किया है इससे वो हदफ पूरा हो गया है किसी हद तक जो वो हासिल करना चाहते थे? करजई साहब,
लेकिन क्या हदफ था? हदफ अगर ये था कि ये हमेशा के लिए अफगानिस्तान में ऊपर आम रहे तो ये 12 साल काफी एक लंबी मुद्दत है हुकूमत की, अभी अपने बाकी को या अपने किसी उम्मीदवार को इंतखाबात में जितवाना चाहते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये है कि क्या अफगानिस्तान में इस्तेमाल आया, वहां पे तरक्की हुई, जितने पैसे आए बाहर से वो सही इस्तेमाल हुए, क्या अफगानिस्तान के अवाम के मसले हल हो गए, वहां पे अमन कायम हो गया? मेरे ख्याल में ये सारे काम नहीं हुए। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद कुछ अच्छे काम भी हुए हैं
जी।
एक अफगानिस्तान के अपने मिजाज के मुताबिक जमहूरियत आई है और 2010 के इंतखाबात हुए, 2 पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए, आईन सामने आया, पार्लियामेंट मौजूद है और फिर तालीम के मैदान में सेहत आमा और फिर बाकी शोबों में भी काफी तरक्की हुई है, रोजगार के मौके भी बढ़े हैं, तो काफी वहां पे अच्छे काम भी हुए। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी नहीं है, अमन अमान नहीं है और बेरोजगारी अब भी काफी है, इकतजी मसाइल भी हैं। अब अफगानी की कीमत गिर रही है, प्रॉपर्टीज की कीमतें कम हो रही हैं, लोगों में मायूसी बढ़ रही है, तो ये फिर उनकी नाकामियां हैं। और बाकी अमेरिका के साथ ताल्लुक या अमेरिका का जो नया खेल है या पुराना खेल है, अमेरिका तो हर जगह पे दुनिया में खेल खेल रहा है
जी।
अमेरिका तो हर मुल्क के मामलों में मुदाखलत करता है, यहाँ पे तो उन्होंने फौज भिजवाई और फौज कशी की और फौज के जरिए अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की, अमेरिका को भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इतना उन्होंने खर्च किया, इतने लोग मरवाए, अपने लोग भी मरवाए और बाकी लोगों को भी उन्होंने कत्ल किया, तो मेरे ख्याल में ये एक नाकाम तजुर्बा था और हामिद करजई का इसमें बड़ा ही अहम हिस्सा है, वो भी इस सारे मनसूबे में शामिल थे और इनके लिए भी एक नाकामी है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां हिंदुस्तान के मुमताज़ तजिया निगार अमीर जामई साहब मौजूद हैं। जामई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब जामई साहब, अमेरिका के
वालेकुम सलाम
जी, उस ग्रेट गेम का नतीजा क्या निकला जो बकौल हामिद करजई के दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के नाम पर अमरीका ने इस खत्ते में शुरू किया था, इस ग्रेट गेम में खित्ते को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला और अफगानिस्तान को क्या मिला?
देखिए वो तो दुनिया के सबसे बड़े थानेदार कंट्री हैं अमेरिका, पूरी दुनिया के मुहाफिज हैं अमन के, चैन के, सुकून के, लेकिन तारीख बताती है दुनिया में कि वो लोग जहां पर गए हैं
जी,
कहीं पे भी गए उस मुल्क को जहन्नम बना के लौटे हैं
जी।
अफगानिस्तान के मामले में थोड़ा सा बात कुछ दूसरी है, बात है कि वो आप जरा अमेरिका की मैशियत अगर आप देखिए, जिस तरह से वहां पर बेरोजगारी, वहां के हेल्थ के बजट में, मिलिट्री के बजट में उनके पास पैसे नहीं है, हत्ता के चाइना की मदद से उनका इकोनॉमी को सपोर्ट करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दुनिया में जो एक थानेदार ये दिखाता था कि वो पूरी दुनिया में जो जैसे चाहता है अपनी हुकूमत चलाएगा, लोगों के को बम से मारेगा, ड्रोन से मारेगा, अफगानिस्तान में वो फेल हो गया। कह रहे थे कि वो वहां से अलकायदा के जो इंतहा पसंद हैं उनको हटाएंगे, अमन के लिए लड़ रहे हैं। इस अमन के पूरे अगर आप दहाई देखिए तो हजारों हजार लोग अमेरिका के तो खुद मारे गए और एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान के जो मासूम लोग थे, गांव के लोग, ट्राइबल्स, उनकी जाने अमेरिका की फौजों ने लिए वहां पर। पहले यही हामिद करजई साहब कहते थे कि ये तो पैगंबर हैं अमन के, बुश साहब, वो आएंगे और उनको सत्ता दिलवाएंगे, सत्ता तो दिलवा दी, लेकिन अफगानिस्तान में बचा क्या? जाते जाते पूरी हुकूमत को अलकायदा के और तालिबानियों के हवाले करके चले गए, खाना जंगी के हालात बने हुए हैं, 50 ग्रुप्स वहां पर हैं जो वहां पर अम नहीं चाहते हैं, हामिद करजई की ना वो वहां पे एंट्री चाहते हैं, ना अमेरिकन फोर्सेस की एंट्री चाहते हैं। पहले बोल रहे थे कि अलकायदा दुनिया के लिए, उनके लिए, अमन के लिए सबसे खतरनाक ताकत है। अब अमेरिका कह रहा है, ये जो कुवैत में पूरा कॉन्फ्रेंस करवाया, आप कह रहे हैं साहब उसमें दो तरह के लोग हैं, एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है। आज जो हामिद करजई साहब का जो रुख बदला है, मेरा यह मानना है कि वो CIA के, सही कहा अभी यहां पर कुछ जो हमारे सीनियर सियासतदान वहां से थे पाकिस्तान से, कि बेसिकली वो CIA के लिए काम कर रहे थे। और इस वक्त जो फिल्म का एक क्लाइमेक्स होता है, उस दौर से अफगानिस्तान की सियासत गुजर रही है जिसमें वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अगर वहां से पूरी ताकत के साथ मतलब क्या क्या हारने के बाद वापस जाता है, तो दुनिया में जो उसका असर है, दुनिया में जो उसका रौब है थानेदारी का, उस पर सवालिया निशान खड़ा होगा। लोग अमेरिका की ताकत पे हंसेंगे, क्योंकि चाइना, ईरान, हिंदुस्तान जैसी ताकतें उसके सामने उभर रही हैं। इसलिए हामिद करजई साहब बाइज्जत उनको वापस निकालने के लिए शर्तों की बात पर उनके सामने अड़े हुए हैं। और मेरा अपना यह ख्याल है, तालिबान के जो गुट तालिबान है, जाते जाते उनको भी ये नोबेल पीस दिलवा के जाएंगे और खुद ये नोबेल हासिल करना चाहते हैं, ताकि अगली जो सरकार, अगली जो हुकूमत अफगानिस्तान में बने, उनमें उसका एक असर हो और कहा जाए साहब शांति के मसीहा तो दो ही लोग थे, एक जॉर्ज बुश साहब थे, एक हामिद करजई साहब थे। तो मुझे लगता है कि हामिद करजई साहब अमेरिका का जो बचा हुआ काम है वो कर रहे हैं, और ये हैरत की बात है। वो कह रहे हैं कि साहब हमको उनको विड्रॉ करना था 2014 में, लेकिन 14,000 से 16,000 फौजी, उसके बावजूद वो अफगानिस्तान में रुकने वाले हैं। एक पूरे दहाई में आपने इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं कर पाए अफगानिस्तान से, अब 16,000 लोगों का जो पूरा भार है वो अफगानिस्तान के लोग कैसे उठाएंगे? जो वहां पर अमन की बात है वो तो कह रहे हैं, वहां के जो जमहूरी लोग हैं, जो वहां की आवाम है, वो कहती है तुम यहां से बाहर निकलो, हमारे घर का मसला है, हम सारे लोग बैठ के तय करेंगे कि हमें कैसे हुकूमत चलानी है। लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी गुट तालिबान का एक कोई चेहरा लाकर, हामिद करजई साहब को नोबेल पीस का अवार्ड दिलवाकर, अफगानिस्तान में जो कुछ बचा हुआ है उसको तबाह करके, तभी वो लोग वहां से वापस जाने वाले हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कबल इसके कि हम जावेद सिद्दीक साहब की तरफ चलें, एक सवाल यूसुफ जई साहब से करके उनसे इजाज़त चाहेंगे, उन्हें कहीं जाना है। यूसुफ जई साहब आप हैं लाइन पर? जी रहमुल्ला साहब।
जी बिल्कुल
जी। जनाब आपके ख्याल में ये होगा क्या? हामिद करजई साहब तो जिस तरह से अभी तक डटे हुए हैं, तो लग तो यही रहा है कि वो 15 जनवरी भी गुजर जाएगी और इस पर इलेक्शन के बाद ही दस्तखत हो पाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या हामिद करजई ये चाहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी मुआहदा है इसका इल्ज़ाम उनके सर ना आए और आने वाला सदर उस पर दस्तखत करे ताकि सारी आई गई उसके सर जाए?
देखिए ये भी एक वजह है, उनको अफगानिस्तान की तारीख में अपनी फिक्र पड़ गई है, वो नहीं चाहते कि शाहजा या बद्रस्तानी की तरह उनका नाम ऐसे घरानों की सफर में लिया जाए जिन्होंने गैर मुल्की फौजों को रास्ता दिया। शाह शुजा बरतानिया की फौज को लेकर आए थे और गजरे काल में रूसी फौज को बढ़ाने के लिए और हुकूमत में आने के लिए उन्होंने ये काम किया था। अब हामिद करजई जा रहे हैं तो ये तो जाहिर नहीं चाहेंगे कि ये इसके ऊपर दस्तखत करें। और मेरे ख्याल में देखिए अगर हामिद करजई नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा
जी।
ये मुआहदा होना है, ये अमेरिका की ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है।
जी।
और अफगानिस्तान का जो हुक्मरान तबका है ये उनकी भी ख्वाहिश है, वो उनके पास इतने वसाइल भी नहीं है और उनकी हुकूमत भी कमजोर है और फौज भी कमजोर है, उनको गैर मुल्की इमदाद चाहिए, पैसा चाहिए, फौजी इमदाद चाहिए
जी।
उनको 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर सालाना चाहिए फौज को तनख्वाह देने के लिए, उनके लिए अस्त्र खरीदने के लिए। तो मेरे साथ मेरे पास और कोई चारा नहीं है
जी।
और उन्होंने अगर हुकूमत में रहना है, जो लोग इस वक्त हुकूमत में है या जो से एक अपोजिशन है, तो वो फिर ये मुआवजा जरूर करेंगे, इसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन ये है कि हामिद करजई जो है, अगर वो करते हैं तो वो आइंदा के लिए अपने लिए मुश्किल कर सकते हैं, अमरीकी जो है फिर वो अपना इंतकाम भी लेते हैं। हामिद करजई और उनके भाइयों का कारोबार भी है अमरीका में और उन्होंने बड़े पैसे कमाए हैं अफगानिस्तान में, तो ये पैसे फिर जो है अमेरिका इनके लिए फिर मुश्किल पैदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हामिद करजई को अपने खानदान वाले भी कहेंगे कि इसके ऊपर दस्तखत कर दो, और जो उनके वजरा हैं और जो उनके हामी हैं ये सारे चाहते हैं कि दस्तखत हो जाए, क्योंकि सबको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि अगर अमेरिका पूरी तरह निकल गया
जी
और अमरीकी फौजी इमदाद न हुई तो फिर अफगानिस्तान में क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल आखिर ये मौजा हो जाएगा, लेकिन ये है कि क्या इससे मसला हल होगा? नहीं, इससे भी अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, ये जंग खत्म नहीं होगी और अफगानिस्तान के अवाम की मुश्किल भी जारी रहेंगी और खासतौर पर पाकिस्तान की मुश्किल भी खत्म नहीं होंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब। और अब चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। जी जावेद सिद्दीक साहब, बाज़ लोगों का ख्याल है कि अफ़गान सदर हामिद करजई शरायत पेश करके और दस्तखत से इनकार करके दरअसल अमेरिका से कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में जो डील है वो यही है कि वो उनको ये अंदाज़ा है कि अब मेरे लिए अफ़गानिस्तान में हुकूमती सतह पे कोई रोल नहीं है, ये नहीं है कि वो दोबारा सदारती इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते
जी।
और इस मरतबा जो है उनका कोई अपना कैंडिडेट हो सकता है जिसको वो कामयाब कराने की कोशिश करें, और ये जो इन्होंने सारा गेम शुरू किया है ये इसलिए है कि कोई नया सदर जो है या तो उनकी पार्टी या उनके ग्रुप का हो और अमरीकी उसकी मदद करे और वो इलेक्ट हो जाए और वो उनके ज़ेरे असर रहे, ताकि अफ़गानिस्तान की सियासत पे कारज़ई साहब जो हैं वो पीछे बैठ के उसकी डोरियां हिलाते रहें, ये उनका मतबे नज़र है। और इसका लगता यह है कि ये शरायत जो पेश कर रहे हैं और ये जो डिले कर रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं एग्रीमेंट साइन करने की, उसका एक मकसद जो है वो यही है कि वो अपने आप को अफ़ग़ानिस्तान में मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें वो उसको अपने आप को रेलेवेंट रखें, ये उनकी स्ट्रेटजी नज़र आती है। और मैं ये समझता हूँ कि कारज़ई साहब जो है वो ये जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा फैक्टर है अफ़ग़ानिस्तान में कि उसके साथ वो अगर तसादम करेंगे या एक महाज़राई शुरू करेंगे तो अमेरिका को उनके मुतबादल और लोग भी मिल जाएंगे, और कारज़ई साहब जो है उनके ख़िलाफ़ अमरीकी जो हैं वो कहते रहे हैं कि ये इन्होंने बड़ी करप्शन की है, इन्होंने बड़ी मिसमैनेजमेंट की है, इन्होंने फंड्स जो हैं वो ज़ाया किए हैं। तो मुमकिन है कि जो नया सदर हो, अगर वो उनके असर रसूख में ना हुआ और वो एक इंडिपेंडेंट सदर हुआ या उनकी मुखालफ लाबी से हुआ, तो वो उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है, तहकीकात शुरू की जा सकती है अमरीकी ईमा पर। तो उनको अपने इन खतरात का भी एहसास है, लेकिन वो एक ऐसे मरहले पर एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के लोग, ख़ास तौर पर पश्तो स्पीकिंग जो लोग हैं उन रीजन्स में, उनकी कम अज़ कम एक इज़्ज़त और साख बहाल हो, और चूँकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी छाप लगी हुई है कि वो अमरीकी एजेंट थे, वो अमरीका के पपेट थे और उन्होंने 10 साल 12 साल तक अमरीका का एजेंडा जो है अफ़ग़ानिस्तान में उसको आगे ले कर बढ़ते रहे हैं। तो अब इस मरहले पर उनकी ये कोशिश है, वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं ये मुस्तकबिल ही बताएगा, इसके कितने इम्कानात हैं कि वो उनका जो ये कार्ड्स या ये खेल रहे हैं या जो ताश के पत्ते वो इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी एतबार से, क्या वो उनके लिए कारगर साबित होंगे, नतीजा खेज होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये उनको पता है कि अब उनका रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है और उनकी जगह कोई और अमरीकी जो है किसी और करेक्टर को, किसी और किरदार को तलाश कर रहे हैं और उनको वो चाहिए जो कि उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ जो हैं वो तशकील दे। अमरीका जो है उसकी ये कोशिश है कि अगरचे वो ड्रा डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं यानी फोर्सेस की तादाद कम करेंगे, लेकिन कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार, बाज़ औक़ात जो वो कहते हैं 25 से 30 हज़ार तक फ़ौज जो है वहाँ पर मौजूद रहेगी। बागराम बेस जो बहुत स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो उनके पास रहेगा और कई अड्डे हैं जो अपने कब्ज़ा कुदरत में रखना चाहते हैं और उनकी अहमियत का उनको एहसास है। तो ये वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अगर वो विड्रॉल करें मुकम्मल तौर पर तो अफ़गानिस्तान में फिर से एक खाना जंगी शुरू हो जाए और जो मुख्तलिफ मुतहारब दड़े हैं ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाए। एक ख़दशा उनको ये भी है कि तालिबान जो हैं वो कहीं दोबारा इख्तदार में ना आ जाए और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया होगा कि अगर तालिबान जो है री एमर्ज करते हैं असरनो उनकी ताकत जो है वो सामने आ जाती है और वो अफ़गानिस्तान के बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो ये अमरीकियों के लिए और नेटो के लिए ये बहुत बड़ा एक सानिया होगा। इसको वो रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो वहाँ पे रहना चाहते हैं। उनको एक जो है ट्राइबल एरिया पाकिस्तान का ख़ासतौर पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान वो भी उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि बहुत से अलकायदा के लीडर जिन पे वो ड्रोन हमले कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों ही उन्होंने 3-4 ड्रोन हमले पाकिस्तान के इलाके शमाली वज़ीरिस्तान पर किए हैं और कहा है कि हमने उन्होंने हकीमुल्ला महसूद जो है उसको भी हलाक किया जो कि पाकिस्तानी तालिबान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडर था और भी कई नाम वो लेते हैं कि इन्होंने अलकायदा के लोगों को वहाँ से बिल्कुल बेबस करके रख दिया है। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि ये खतरात मौजूद हैं वहाँ पे गैर मुल्की जो है फाइटर्स या लड़ने वाले लोग मौजूद हैं और जब तक वो मौजूद हैं अमरीका के लिए ख़तरा होगा। और इसके अलावा वो उनको ये भी ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान में मुतहारब दड़े जो हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो उनका ये जो एक ख्वाब था या वो एजेंडा लेके आए थे कि अफ़गानिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाया जाए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए रन किया जाए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या एक इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए जो अफ़गानिस्तान को चला सके, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो अमेरिका और नेटो और यूरोप को बहुत बड़ी हजीमत का सामना होगा। इसलिए कि उन्होंने 10-11 साल तक अफ़गानिस्तान में इतना बड़ा स्केल के ऊपर ऑपरेशन चलाया और उन्होंने इतने डॉलर्स वहाँ खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ अमन और इस्तेकाम ना हुआ और वहाँ पर जमहूरी जो जो सिस्टम उन्होंने एवॉल्व किया या बनाया अगर वो सिस्टम चल ना पाया और दोबारा तालिबान या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं वो इक्तदार में आ जाते हैं अफ़गानिस्तान में तो ये उनके लिए एक नाइटमेयर एक भयानक ख्वाब होगा अमरीका के लिए। इससे बचने के लिए वो अमरीकी फ़ौज का वहाँ रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ी परेशानी का सबब है कि अफ़गानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, अगर उसमें स्टेबिलिटी या इस्तेकाम नहीं आता और खाना जंगी शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान का तजुर्बा यह है कि जब सोवियत फोर्सेस अफ़गानिस्तान से 89 में निकली थी तो उसके बाद जो खाना जंगी होती रही 10 साल तक उसके नतीजे में कई जो महाजरीन हैं वो पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ले ली और पाकिस्तान को उसमें बड़ी परेशानी हुई। इसी तरह ईरान है उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त महाजरीन जो है जब सोवियत फोर्सेस दाखिल हुई थी तो उन्होंने ईरान में भी पनाह ली थी। तो पड़ोसी मुल्क जो है इस सारी सूरत हाल से मुतासर हो सकते हैं, उनकी भी परेशानियां जो है उनको भी जहन में रखना चाहिए और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेकाम अमन और खुशहाली जो है ये ख्वाब है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रिसेंटली जो अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि खुद अमरीका को ये यकीन नहीं है, नेटो को भी ये यकीन नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो है मुस्तकबिल में एक मुस्तहकम मुल्क रह सकेगा या नहीं और वहाँ पे खाना जंगी जो है वो रोकी जा सकेगी या नहीं। तो अभी तक कोई वाज़े और ठोस यकीन दानी अमेरिका दुनिया को नहीं करा सकता कि अफगानिस्तान मुस्तकबिल में एक पुरअमन मुल्क रहेगा और वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत नहीं होगी।
बहुत बहुत
ये रिपोर्टें जो है अभी आ रही हैं और अलबत् जी
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये है कि बाज़ जो अमरीकी सफारतकार हमें मिलते हैं
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। जामी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, डेढ़ मिनट का वक्त है, आप ये बताइए कि काबुल वाशिंगटन सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत में ताखीर के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, डेढ़ मिनट का वक्त है हमारे पास।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि अमेरिका के साथ ही रहकर उनके 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 मुल्क का, उनके देश का कोई भला हो सकता है, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। पाकिस्तान ने उनके साथ रिश्ते बनाकर अपने अपने देश को तबाह करके देख लिया है। हमारे ऊपर भी अमेरिका की कुछ ताकतें मुसल्लत होना चाह रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के मेजोरिटी लोगों ने उनसे समझ लिया। सीधी सी बात है कि इस बार क्या हुआ है अफगानिस्तान में, एक बहुत मेन बात है जो आपको को थोड़ा सा नजर शानी करना चाहिए कि जो पूरा रेवेन्यू का उनका बजट है 50% वो कोकीन और ओपियम से इस बार पैदा हुआ है। उसके जो बड़े प्लेयर हैं वो चाहते हैं कि ये जो हम देश तो लड़ रहा था तालिबान के खिलाफ, अब ये गुड तालिबान बैड तालिबान उसमें बीच में कहां से आ गया, मुझे कोई समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों के पीछे वो जो लॉबी है, पूरा जो कॉर्पोरेट बिजनेस लॉबी है जो कि वाशिंगटन से सीधे चल रहा है, हामिद करजई साहब उसके कैप्टन हैं, वो लोग चाहते हैं कि मुल्क को जो नया हुकूमत चुनी जाएगी, जो नई सदर चुने जाएंगे, वो गुड तालिबान को अमेरिका हैंडओवर कर देगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर गुड तालिबान अफगानिस्तान को हुकूमत करेगा तो बैड तालिबान जो जिनका उन्होंने नाम दिया है वो वहां पर खामोशी से बैठेंगे,
बहुत
मुल्क को जला के राख कर देंगे जो बचा हुआ है।
बहुत
लड़ाई
बहुत
है सीधी जो वहां की हुकूमत है उसको।
हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल अपने अख्तिताम को पहुंचा चाहता है और इसी के साथ नाजरीन अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे भी इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।